मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 23 जनवरी 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आप सबसे असफलता के बारे में कुछ बातें की थी। मुझे लगा कि नहीं, इस विषय को अभी और आगे बढ़ाया जाना चाहिए और सच पूछे तो इस बात की प्रेरणा मुझे आप सबके द्वारा लिखे गए कुछ मेल्स से भी मिली कि कल के एपिसोड को आप सब में से बहुत लोगों ने सराहा है और ये इच्छा भी व्यक्त की है कि इस विषय को आगे बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान होगा कल मैंने इस विषय पर लिखी गई अपनी एक किताब का जिक्र किया था और उस किताब का शीर्षक है असफल होना जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को आप सब कोशिश करें कि पढ़ें, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में असफलता क्या होती है, सफलता कैसे मिलती है, असफलता की फिलॉसफी क्या है, ऐसे दौर में हमें कैसे अपने आप को संभाल कर रखना है, या यूं कह लीजिए कि असफलता को सही नजरिए से देखने की एक दृष्टि निश्चित रूप से पैदा होगी। इस किताब में मैंने सारी बातों को बहुत ही व्यावहारिक तरीके से उदाहरणों के जरिए रखने की कोशिश की है और आपको यह पढ़कर शायद आश्चर्य हो और हो सकता है कि आप मेरी इस बात पर विश्वास भी न कर सकें कि मैंने कृष्ण को, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जीवन में एक असफल व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया है। यानी कि वो अपने जीवन भर असफल ही रहे हैं, असफल रहे और इसके बाद हम उन्हें कौन सा दर्जा दे रहे हैं, भगवान का दर्जा दे रहे हैं। यानी कि असफलता भी कभी इतनी बड़ी सफलता बन सकती है। तो इस तरह से बहुत से डायमेंशंस आपको इस किताब में देखने, समझने और पढ़ने को मिलेंगे। और एक बात और कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लिखने का जो अंदाज रहा है मेरा कुछ इसी तरह का रहा है कि स्टूडेंट को, आप सबको जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको मैं बोरियत से बचा सकूं। तो दोस्तों, पहली बात तो यह कि कोशिश कीजिए कि आप इस किताब को पढ़ सकें। और आज मैं जो असफलता पर अपनी बात रखने जा रहा हूं वो एक अलग ही अंदाज में, और अंदाज कुल मिलाकर यह कि जिस किताब की मैंने अभी बात की है उसके पहले अध्याय की शुरुआत को मैं आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत कर रहा हूं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस घटना को अभी आप सुनेंगे वह घटना 100% सही है, इसमें आप जरा भी संदेह मत कीजिएगा। तो आइए पहले हम लोग उस घटना को सुन लेते हैं, समय मिला तो कुछ और बातें करेंगे, अदरवाइज आप सब अपने अपने ढंग से इस घटना के बारे में विचार कीजिएगा। तो मैं अब शुरुआत करता हूं। उसकी बेहद बुझी हुई और गहरी अंधेरी खाई में डूबी हुई सी आवाज ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मुझे उसे मिलने का समय तुरंत दे देना चाहिए। और दिसंबर की कोहरे से ढकी हुई कड़कड़ाती ठंड वाली अलस भोर में अगले ही दिन वह मेरे सामने हाजिर था। आंखें सूजी हुई, छोटी छोटी उगी हुई दाढ़ी से ढका हुआ बेहद उदास चेहरा, निढाल सा पूरा शरीर जिसे तुड़े मुड़े कपड़े किसी तरह से ढके हुए थे। यह क्या हो गया है आंसू, तुमको, तुम ठीक तो हो ना? यह जानते हुए भी कि वह ठीक नहीं है, मैंने अपनी घबराहट को छिपाते हुए बात की शुरुआत करना ठीक समझा। सब कुछ खत्म हो गया सर, सब कुछ। बहुत कोशिश करने के बाद वह मुश्किल से इतना ही बोल पाया। उसका गला भराया था किंतु आंखें नहीं, शायद वे रोते रोते रीति हो गई थी। दरअसल बात यह थी कि तीन भाइयों में आशु सबसे छोटा था और उसके दोनों भाई देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी IAS में थे। हालांकि इसका भी सिलेक्शन राज्य की प्रशासनिक सेवा में हो गया था, लेकिन अपने भाइयों के कद को देखते हुए उसे यह नौकरी ठीक नहीं लग रही थी। वह IAS के लिए लगा हुआ था और कल ही उसकी परीक्षा का रिजल्ट आया था। यह उसका अंतिम चांस था। जाहिर था कि अब वह कभी सीधे सीधे IAS नहीं बन सकेगा। हाँ, यदि रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा तो 15 से 20 साल के बीच राज्य प्रशासनिक सेवा की नौकरी के बाद शायद उसे IAS अवार्ड हो सकता था, लेकिन यह उसे मंजूर नहीं था। यह एक सुखद संयोग था कि उस समय जबकि उसने अपनी परीक्षा का रिजल्ट देखा ही था, उसकी पैंट की पॉकेट में मोबाइल था जिसमें उसने मेरा नंबर फीड कर रखा था। मोबाइल हाथ में आते ही उसने रेल की पटरियों की ओर जाने से पहले मुझसे फोन पर बात करने की सोची और फिलहाल इस जबरदस्त ठंड में बिना पर्याप्त गर्म कपड़ों के वह मेरे सामने बैठा हुआ था। फैसला हुआ कि वह डिप्टी कलेक्टर की नौकरी ज्वाइन नहीं करेगा, इसकी जगह वह पत्रकारिता करेगा। और कुछ ही दिनों बाद उसने राज्य स्तर के एक न्यूज चैनल को ज्वाइन कर लिया। आईएएस की तैयारी उसे जनरल नॉलेज का महारथी बना चुकी थी, विश्लेषण की उसकी क्षमता भी काफी ठीक हो गई थी। नतीजा यह हुआ कि 2 साल के अंदर ही वह एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल में पहुंच गया और कुछ समय के बाद वह उसका प्रमुख भी बन गया। अब वह एक सेलिब्रिटी है, उसको जानने वालों की संख्या उसके दोनों आईएएस भाइयों को जानने वालों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। अधिकारों के मामले में भी भले ही वे अधिकार सीधे सीधे उसके हाथों में न हो, वह अपने भाइयों से अधिक है। कुल मिलाकर यह कि अब उसकी आंखों में चमक और उत्तेजना है, दाढ़ी वह रोज बनाता है, किसी अदृश्य ऊर्जा के आवेश में उसका शरीर लगातार उछलता हुआ जान पड़ता है और कपड़े वह ऐसा पहनना पसंद करता है जो बिल्कुल ही तुड़े मुड़े न हो। अब उसे अक्सर लोगों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यदि अपने मन की हो जाए तो अच्छा है और यदि मन की न हो तो उससे भी अच्छा है। वह एक ईमानदार नौजवान है, इसलिए इस वाक्य को कहने के बाद वह यह कहना कभी नहीं भूलता कि यह मेरा नहीं हरिवंश राय बच्चन जी का सेंटेंस है जो वे अपने बेटे अमिताभ बच्चन से कहते थे और जो अमिताभ बच्चन के जीवन के प्रेरक वाक्यों में सबसे ऊपर है और मेरे भी जीवन में। यह केवल एक आंसू की सच्ची कहानी नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जो जी रहे हैं और जो जी चुके हैं। हम सब में एक आशु है या हम सब आशु ही हैं। जीवन में कहीं से थोड़ा सा फर्क आता है और यह थोड़ा सा फर्क ही जीवन में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। आशु के जीवन में वह थोड़ा सा फर्क पैदा करने का काम किया उसकी जीन्स के पॉकेट में पड़े मोबाइल ने। यदि मोबाइल नहीं होता तो, मोबाइल तो होता किंतु उसमें बैलेंस नहीं होता तो, बैलेंस तो होता किंतु यदि उस पर आशु का हाथ न पड़ा होता तो, हाथ तो पड़ा होता किंतु यदि उसमें मेरा नंबर फीड न हुआ होता तो, मेरा नंबर तो फीड होता लेकिन उसके मन में मुझे फोन करने का विचार न आया होता तो, यदि मन में विचार आया होता किंतु उसने न किया होता तो, यदि उसने किया होता और मेरा नंबर नहीं लगा होता तो, और यदि लग गया होता और मैंने नंबर नहीं उठाया होता तो। इतने सारे तो हैं यहां, लेकिन संयोग और सौभाग्य की बात यह है कि इनमें से एक भी तो सच्चाई में नहीं बदल पाया। क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड या फिर इस अदृश्य शक्ति ने उसकी इतनी मदद की कि उसने क्षण भर में खत्म हो जाने वाली जीवन की तेज रफ्तार वाली जिंदगी के रास्ते में एक भी रेड लाइट पड़ने नहीं दी। वह आशु की मदद के लिए सामने आई, वह आती ही है, वह हम सब की मदद के लिए सामने आती है क्योंकि उसके लिए सभी आशु हैं। तो मित्रों, ये मैंने छोटे से एक अंश को आपके सामने रखा है और मैं रिपीट कर रहा हूं कि यह बिल्कुल सच्ची घटना है, 100% सच्ची घटना। जैसा कि मैंने कहा कि हम सब या तो आशु ही हैं या हम सब के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा आशु बसता है, निवास करता है। और अगर इस सिद्धांत पर हमारा भरोसा है तो मान करके चलिए कि जीवन ने हमारे लिए बहुत बहुत विराट दरवाजे बना रखे हैं और उसने दरवाजे खोल करके भी रखे हुए हैं और वह हम सब के प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ दरवाजे बंद हो सकते हैं जीवन के, लेकिन सभी दरवाजे कतई नहीं। हो सकता है कि जो दरवाजे बंद हैं उससे बहुत बड़ा दरवाजा हमारा इंतजार कर रहा हो, बशर्ते कि हम अपनी आंखों को आंसुओं की डबडबाहट से धुंधला न पड़ने दें, अपनी आंखों को ऐसा रखें कि वो उन खुले हुए प्रतीक्षा कर रहे दरवाजों की ओर देख सकें। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। आप सब अब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।